शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह संगम युगी ब्राह्मण जीवन बहुत 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 अमूल्य है। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में ये समझाते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन कल्प में केवल एक ही बार मिलता है, वो भी केवल इसी समय, और इसी समय ही हम वास्तव में सारे कल्प का भाग्य निर्धारित कर सकते हैं। वैसे तो कहेंगे कि ड्रामा अनुसार सब कुछ पूर्व निश्चित है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पहले आता है फिर प्रारब्ध आती है। हर प्रारब्ध के पहले पुरुषार्थ जरूर है, हर फल के पहले बीज जरूर है। इसलिए इस संगम युग पर हम जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य निर्धारित होगा कल्प कल्पांतर का। तो आज का जो विषय है, जमा का खाता बढ़ाने की विधि। वैसे भी मान्यता है कि हर एक व्यक्ति को सारे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई वो 24 घंटे ऐसा सफल करता है जो उसका जीवन सफल हो जाता है, और कोई व्यक्ति 24 घंटे उसको भी है लेकिन वो अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति बर्बाद करता रहता है, और परिणाम स्वरूप उसका सब कुछ व्यर्थ जाता है और उसका जीवन असफल हो जाता है। तो है तो सबके पास वही 24 घंटे, ऐसे नहीं कि जो सफल व्यक्ति हुआ उसको कोई ज्यादा घंटे मिले, लेकिन कैसे समय वो ही, लेकिन वो सफल क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना हर क्षण सफल किया, जिसको बाबा कहते हैं सफल करो और सफलता को पाओ। वैसे भी दुनिया में यह मान्यता जरूर है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जो दोगे वही आपको वापस आएगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। तो वो तो दुनिया का हिसाब है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के लिए अलग हिसाब रखा है कि जितना और उतना नहीं है, जो और वो नहीं है, जैसा और वैसा नहीं है, परंतु उनसे कई गुना अधिक है। बाबा मिसाल देते हैं, एक बीज डालते हैं तो कितने फल निकलते हैं, एक फल में कितने बीज हैं शायद वो गिनती भी किए जा सकते हो। फल को काटो तो बीज कितने निकलते हैं वो पता कर सकते हैं, लेकिन एक बीज बोने से कितने फल निकलेंगे ये बीज बोते वक्त नहीं पता चलता है। और ये भी नहीं है कि बीज बोया और फल तुरंत निकला, वो अपना समय लेता है। तो कर्मों की गति अनुसार भी ये लागू तो होता ही है, परंतु संगम युग पर बाबा कहते हैं तुम एक बीज बोते हो उसका लाख गुना पदम गुना तुमको मिलता है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, तुम्हारे एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। तो जब ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं तो जरूर मन में संकल्प उठते हैं कि कैसे ये जमा का खाता हम बढ़ाएं, क्योंकि दोनों तरफ है, या तो जमा का खाता बढ़ेगा या तो घटेगा। और जैसे बड़े व्यापारी होते हैं तो उनका व्यापार भी बहुत बड़ा होता है तो उनका घाटा भी ज्यादा तो जमा भी ज्यादा, करोड़ों का जमा हो जाता है और करोड़ों का घाटा भी होता है। छोटे छोटे व्यापारी होते हैं तो घाटा भी कम जमा भी कम, उसी अनुसार जितना उसका व्यापार होगा। तो बाबा कहते हैं तुम तो बहुत बड़े व्यापारी हो, तुमने भगवान के साथ व्यापार किया है, दुनिया में तो मनुष्य मनुष्यों से व्यापार करते हैं पर भगवान से क्या व्यापार किया है, तुम देते क्या हो और लेते क्या हो। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, एक सिंधी में कहावत है कि सुबह जो साई बेरा बने लाई, ये सिंधी में कहावत है, मुरली में आता है, सवेरे जो साई बेरा बने लाई, मत जो मूड़ो गंड जो गूड़ो एस एरो ग्राहक दिलाई, सिंधी में कहते हैं। व्यापारी लोग पहले जमाने में जैसे ही दुकान खोलते थे ना, तो दुकान खोलते समय परमात्मा को प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, ए सुबह का साईं बेरा बने लाई, बेरा माना बोट नाव, ऐसा व्यापारी आ जाए हमारे पास, बोट में दूर विदेश से आ जाए, शिप में आ जाए, बेरा बने लाई उस शिप को हमारे पास ले आए, और वो ऐसा व्यापारी हो जो गंड का गूरा हो, उसकी जेब बहुत भरी हुई हो पर मत का मूड़ा हो, माना बुद्धू हो, बुद्धू हो, और ऐसा हमें ग्राहक दिलाना हो जो पैसे वाला भी हो और मती उसकी माना बुद्धू हो, तो ऐसा दिलाना ताकि हमारा पहला व्यापार जो बोनी है ना वो इतनी हो जाए जो हमको कुछ नहीं देना पड़े पर हमको सारा मिल जाए। हाँ, ऐसा तो ये भक्ति में गाते थे। और पहला ही अगर ग्राहक ऐसा मिल गया जो मूड मती है, मत का मूड़ा मूड है और गांठ उसकी जो जेब है वो भरी हुई है, तो पहली सफलता अगर मिल गई तो सारा दिन सफल ही सफल होगा उसके लिए, व्यापारी लोग ऐसे समझते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी कम व्यापारी नहीं हो, तुमने सौदा किया है भगवान के साथ। भक्ति मार्ग में भी हम सौदा करते थे लेकिन भक्ति मार्ग का सौदा और ज्ञान मार्ग का सौदा में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में क्या सौदा करते थे, हे भगवान आप मेरा ये काम कर दोगे ना, तो जैसी जैसी जिसकी क्षमता उस अनुसार वो भगवान को कहता था, हे भगवान ऐसा मेरा अगर ये काम कर दोगे तो मैं 1,000 रुपए का भोग चढ़ा दूंगा, 1,00,000 रुपए का चढ़ा दूंगा, जैसी जिसकी क्षमता। कोई गरीब होगा वो कहेगा 10 रुपए का भी चढ़ा दूंगा, पर मेरा काम ये पहले करना। तो ये मेरा काम करना, तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये भगवान को कहते थे। लेकिन देखो बाबा कहते हैं ये कितना बड़ा ज्ञान है, भगवान को क्या देते हो और क्या मांगते हो। किसी ने एक बहुत अच्छी बात हमें कही कि एक व्यक्ति दुकान में गया और अपने इष्ट की मूर्ति, कृष्ण की पूजा करता था तो कृष्ण की मूर्ति उसने मांगी दुकानदार से, खरीदना था। अब उसने कहा कि ये मूर्ति तो 100 रुपए की है। उसने कहा 100 रुपए की तो बहुत महंगी है, मुझे तो 50 रुपए में दो। तो बहुत उसके साथ बार्गेन करने लगा, तो आखिर चलो 50 रुपए में उसको मिल गई, दे दी चलो। अब जब वो मूर्ति को घर में ले आया तो मूर्ति के सामने पूजा शुरू की उसने, और पूजा में तो वो लाखों मांग रहा है भगवान से। और मूर्ति खरीदते समय तो हिसाब कर रहा है, ये 100 की नहीं 50 की दो। चलो दुकानदार ने दया करके दे दी जो भी, लेकिन जब वो मूर्ति घर में लाई तो लाखों मांग रहा है भगवान से, ये भगवान मेरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, ये काम कर देना, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब ये भगवान से सौदा कर रहे हैं, कैसा सौदा। अब हमारा सौदा कैसा है, हम ऐसे करते हैं क्या, बाबा ये काम मेरा कर देना तो मैं भोग लगा दूंगा। ऐसा ये वास्तव में स्वार्थ का सौदा है। हम बाबा से कैसा सौदा करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी होकर रहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ बाबा आपका है। और बाबा कहते हैं बच्चे मेरा समझ कर इसको यूज करो, ट्रस्टी होकर के रहो। अब ये भी एक सौदा है, बाबा हमसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन एक ये सौदा है कि हम उनका समझकर जब उसको यूज करते हैं तो जितना भी यूज किया वो सफल ही होता है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन शर्त ये है कि उसका समझ करके हम यूज करें, भक्ति में उसका समझ करके यूज नहीं करते। भले कहते हैं आरती में तो यही कहते हैं ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो क्या लागे मेरा भगवान, ये सब कुछ तेरा है। पर प्रसाद चढ़ाते समय मैंने इतना प्रसाद दिया, मैंने इतना चढ़ाया, मैंने ये किया, मैं कितना आ जाता है। और यहाँ बाबा कहते हैं मैं और मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है। अर्थात ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, जो कुछ है ये बाबा का है, बाबा के लिए है, बाबा को अर्पित है। अब ये है सचमुच सफल करते रहना, सफल करना और सफल बनना। तो कैसे हम ये सफल करें, जो हमारा जमा का खाता बढ़े, वहां तो सिर्फ धन की बात होती है और कुछ बातों में नहीं करते। यहाँ तो बाबा कहते तन की भी बात है, मन की भी बात है, समय की भी बात है, श्वास की भी बात है, संकल्पों की भी बात है, हर चीज, ये पूरा जीवन, क्योंकि जीवन में ये सब बातें आती है। और जब जीवन की सारी बातें इसके अंदर संलग्न है, इसमें समाई हुई है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मेरा है। यहाँ तक हम कहते बाबा ये आत्मा भी आपकी है, खाली तन ही आपका नहीं है, जब मन भी आपका है तो बुद्धि भी आपकी है, तो संस्कार भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जब पूरा आप बेगर बनेंगे तब फिर बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे, पर पहले पूरा बेगर बनना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताते ना, कितनी बड़ी परीक्षाएं उसके सामने आई, मेरा कुछ भी नहीं है। अपने आप को वो समझाता रहा, मेरा कुछ भी नहीं है। उसकी सत्यता की परीक्षा थी। सत्यवान हरिश्चंद्र कहते हैं। और सचमुच उसी परीक्षा में वो जब पास हुआ तो देखो मालामाल कर दिया भगवान ने उसको। अब ये कहानियां किसकी है? हम लोगों की तो कहानियां हैं। जो बाबा कहते हैं कुछ भी अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं माना ये नहीं कि कोई खाली हो जाओ, छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन ममत्व किसी में भी नहीं रखो। यह बहुत बड़ी बात है। छोड़ देना तो बहुत सहज है, सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं, अपना चलो घरवार भी छोड़ा, परिवार छोड़ा, धंधा छोड़ा, सब छोड़ा, और छोड़ करके फिर पता नहीं क्या अपना अपनी पूरी जायदाद बना देते हैं दूसरों के आधार पर, अपना सब कुछ छोड़ करके। तो यहाँ बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा छोड़ना है जो मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा परमात्मा से जोड़ना है जो अपने आप छूट जाए। ये नहीं कि छोड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, नहीं, क्योंकि किसके खातिर कर रहे हैं? कोई हम मनुष्यों के खातिर नहीं कर रहे, भगवान के खातिर कर रहे हैं। तो जब ये बुद्धि में आता है तो हम कदम कदम अपना सफल करते हैं। आज भी बाबा का वरदान बहुत ही सुंदर था कि तुम कैसे बच्चे हर कदम में सफलता पाते हो, परंतु उसके लिए शर्त क्या है? जब बुद्धि में ये रखो मेरा कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में केवल कहने मात्र कहते थे, तो जमा का खाता हम कैसे बढ़ाएंगे? बाबा ने जो हम बच्चों को चार सब्जेक्ट्स दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, वास्तव में ये चारों सब्जेक्ट से हम जमा का खाता बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा ज्ञान का मनन चिंतन करने से कैसे जमा का खाता बढ़ता है। आज तक हम क्या करते थे, कितना व्यर्थ सोचते थे, इसकी बात उसकी बात, पूरा समय हमारा मन क्या क्या व्यर्थ बातों में चला जाता था। अब बाबा ने हमें शिक्षा दी, बच्चे इस व्यर्थ को स्टॉप, व्यर्थ को रोकना भी जमा का खाता बढ़ाना है। हाँ, एक होता है कमाई करके बढ़ाना, दूसरा होता है कि जो व्यर्थ फिजूल खर्च है उस फिजूल खर्च को रोकना, वो भी खाता में जमा होता है। तो पहले तो मनसा का खाता, तो मनसा के खाते में जो बाबा ने हम बच्चों को इतने ज्ञान के रत्न दिए हैं, सुबह सुबह हम बाबा की मुरली सुनते हैं, कितने ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं, एक एक लाइन एक एक ज्ञान रत्न है जो बाबा कहते हैं अमूल्य है, अमूल्य है, अर्थात उसके मूल्य की कोई गिनती नहीं। आप सोचो तो एक मुरली से हम कितने अमूल्य रत्न ले सकते हैं, तो कितना बड़ा हमारा जमा का खाता केवल एक मुरली से ही होता है। तो ज्ञान के रत्नों का हम जितना फिर दिन भर उसका मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे तो बाबा कहते आपका खाता में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो जब तक बाबा का ये ज्ञान नहीं मिला था तब तक अगर कंपेयर करो हमारा कितना संकल्प व्यर्थ जाता था, इसकी बात उसकी बात, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर दर्शन, संसार की सारी बातें वही बुद्धि में था और हम समझते थे बस इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, संसार की सारी बातें हम जान लें, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। बाबा कहते अभी कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। एक बहन ने एक बार, वो किसी को देख रही थी, अखबार पढ़ रही थी, तो उस बहन ने कहा, उस बहन को जो अखबार पढ़ रही थी, ये क्या पढ़ रही हो? कहते ये न्यूज़पेपर है। तो उसने कहा आपको पता है ये रावण का समाचार है, ये अखबारें क्या है, रावण का समाचार। तो दुनिया में जो न्यूज मिलती है ना, ये सब रावण का समाचार है। रावण का समाचार माना यहाँ काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, वैर हो, दुश्मनी हो, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, क्या क्या संसार में होता है, ये सब रावण का समाचार है। अब हमको तो रावण की दुनिया से तो किनारा करना है ना। बाबा हम बच्चों को इस रावण की दुनिया से कैसे किनारा कराते हैं, इनसे वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे बाबा कहते हैं बच्चे ये छीछी दुनिया है, अभी ये गई की गई, अभी ये बस खत्म होने वाली है, ये असार संसार है। सन्यासी कहते हैं यहाँ सुख काग विष्ठा समान है, तो सचमुच है ही काग विष्ठा समान, कहाँ इस कलयुग में सुख रखा है। और फिर एक तरफ बाबा इस कलयुगी दुनिया से नफरत दिला रहे हैं, माना इस कलयुगी दुनिया के बारे में बहुत अधिक सोचने की, उसका समाचार लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमारा कितना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ जाती है। तो वो जैसे ही हमने ये समझा कि ये इसमें व्यर्थ गया हमारा, हम एक सेकंड में उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, बाबा भी अखबार पढ़ते थे, ऐसे नहीं बाबा नहीं पढ़ते थे, लेकिन बस ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लिया, जान लिया, और उस अनुसार बाबा कभी कभी मुरली में भी उसका वर्णन करते थे, कई बातों का वर्णन करते थे। जैसे कल भी, या कल की मुरली थी, गुरुवार की मुरली, बाबा ने कहा कि शक्कर नहीं मिलेगी, देखो आगे समय आएगा तो अनाज भी नहीं मिलेगा, उस समय जब ये मुरली चली होगी उस समय शक्कर की का बहुत राशन था, शक्कर ही नहीं थी, सब होल्ड करके रख दिया था, बहुत कुछ इसके ऊपर बातें हुई थी, ये 60s की बात है। तब सरकार को विदेशों से शक्कर मंगानी पड़ी थी, बहुत कुछ चला। तो बाबा ने कहा आखिर ऐसा आएगा, सब पर राशन आएगा, ये सब धीरे धीरे ये सब मिलना बंद हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, क्या नहीं होगा। तो पता चलता है कि संसार का क्या हाल है। अभी भी अगर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कितना लोगों के अंदर दहशत है, कभी भी कुछ हो जाए। पहले जमाने में कहते थे दो देशों के बीच में युद्ध, अभी दो देश के बीच में नहीं, दो दिशाओं के बीच में युद्ध है, पूर्व और पश्चिम, ये दो दिशाओं के बीच में युद्ध है, वो कभी भी चिंगारी छिड़ सकती है। तो बाबा कहते थे क्या, हाँ ये पता चले तो उससे आपको और बेहद का वैराग्य आएगा। बाकी एक एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ ही जाता है। तो बस हाँ थोड़ी जानकारी हासिल कर ली और उसके अनुसार अपने अंदर वैराग्य दिलाना है, क्योंकि जो कुछ भी समाचार आते हैं ना, कोई भी खुशी के समाचार नहीं होते। अल्प काल की खुशी के लिए आज इंसान क्या नहीं करता, और अंत में उसको दुखी मिलता है। लेकिन आज बाबा ने कितना कहा, कैसे तुम बच्चों से अगर कोई पूछे, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछे, वो तुम्हारे सिवा और कोई गोप गोपियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंद्रियों से परे का जो आत्मिक सुख है, परमात्मिक सुख है, उस सुख को अनुभव करते हैं। तो ये इंद्रियों के सुखों में हम क्यों जाएंगे? इंद्रियों के सुखों को क्या कहते हैं? ये सब अल्पकाल का सुख है बाबा, इसलिए इतने विकारों से नफरत दिलाते हैं। ये सारी विकृतियां जो इंद्रियों के आकर्षण के कारण आती है, जिससे सारे विकार बनते हैं, वो दुख का कारण बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इंद्रिय जीत बनना है, तुमको विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, तुमको माया जीत बनना है, तुमको इंद्रिय जीत बनना है, तुमको विकर्मा जीत बनना है, तुमको कर्मातीत बनना है। अब ये जो सारी बातें हम बच्चों को कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो उसके लिए समय हम कितना निकाल रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं अपने आप को समय। इसीलिए हमारा हर श्वास संकल्प कितना सफल हो रहा है वो हर एक अपने आप से पूछे। तो एक तो ज्ञान का जितना मनन चिंतन करेंगे उतना हमारी हमारी कमाई होती जाएगी, क्योंकि वो रत्न हम भर रहे हैं। जैसे बाबा बिजनेसमैन का मिसाल देते हैं, जब उनके पास ग्राहक आते हैं, वो ग्राहक जब आते तो नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि धन मिलता है ना। ये ज्ञान धन जब आत्माओं को मिलता है तो नींद तो उड़ ही जाती है, क्योंकि इतना धन मिल रहा है हमें, ये जमा का खाता बढ़ रहा है हमारा। क्योंकि जितना ये बढ़ाएंगे अपने ऊपर यूज करेंगे, जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने परिवार को वो यूज करना है, परिवार को यूज करना माना अपनी इंद्रियों के लिए। कैसे एक एक ज्ञान का रत्न हमारे लिए काम आए, मीठा बोलना है, दृष्टि कैसी रखनी है, व्यवहार कैसे करना है, ये हम अपने लिए करें। फिर दूसरों के साथ हमारा व्यवहार है, इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा, आज बाबा ने कहा, और कर्मणा के साथ फिर संबंध और संपर्क, ये सारी बातें आती है। ये सब कमाई हो रही है या हमारा घाटा हो रहा है, ये हर कदम पर हम देख सकते हैं। बाबा बहुत अच्छे मिसाल देते हैं कि देखो जीरो लगाओ, तीन बिंदी लगाओ, कोई भी बात सामने आए बिंदी लगाओ। कई भाई बहने आते हैं, बहन जी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो यही बाबा कहते बस बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। पता नहीं कितने जन्मों का कोई कैसा कर्मों का खाता होगा, चलो चुकतू हो गया, उसने मेरी ग्लानी की, उसने मेरी निंदा की, ये मुझे ऐसा नुकसान दिया पहुंचाया, ये किया वो किया, अब बहन जी मेरे को तो नींद ही मेरी उड़ गई, मैं क्या करूं, बहुत चिंता रहती है। अब बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, पकड़ के रखा है ना इसीलिए फंस गए हो, छोड़ो तो छूटो। जैसे बंदर का मिसाल देते ना, बंदर को अगर पकड़ना है तो क्या तरीका अपनाते हैं बंदर को पकड़ने का, एक मटका होता है, वो मटके का वो जो उनका जो होल है, छेद है, वो छोटा होता है, अंदर वो बड़ा है, और वो उसको चिपका दिया है धरती से, और उसके अंदर चने रखे हैं या कुछ भी रखा है, और बंदर देखता है उसका हाथ उसमें जाता है उसको लेने के लिए, अब लेना चाहता है पर वो ले तब सकता, वो छूट तब सकता है जब वो हाथ छोड़े। अगर वो चीज भी लेनी है और भागना भी है तो वो भाग नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो वो जो मटका है वो तो चिपका हुआ है। अब वो भागना भी चाहता है और वो चीज भी चाहता है, अब दोनों तो नहीं होगी, वो कब भाग सकेगा, जब उसको क्या करेगा, छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं तो उसका हाथ निकलेगा नहीं, और हाथ नहीं निकलेगा तो भाग नहीं सकता है जब तक छोड़े नहीं। तो हम भी क्या करते हैं, बंदर से कम है क्या, छोड़ो तो छूटो, तो ये कहां हम भूल जाते हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये जैसे उस बात को पकड़ के रखना। तभी बाबा कहते तीन बिंदी लगा, उस समय वो ज्ञान का मनन चिंतन, ये बिंदी लगाना ये ज्ञान का मनन चिंतन है। क्या कैसे ज्ञान का मनन चिंतन करो उस समय, सबसे पहले यही सोचो कोई किसी जन्म का हिसाब किताब था, चुकतू हो गया, चाहे उसने मेरी ग्लानी की, मेरी इंसल्ट की, मेरा नाम बदनाम किया, मेरा ये हुआ वो हुआ, चलो हिसाब किताब चुकतू हुआ। ये कितना कितनी बड़ी ये ज्ञान की पॉइंट है, ये रत्न है बहुत बड़ा। एक कहानी सुनाते हैं इस पर कि एक व्यक्ति था, एक राजा था, उस राजा के पास एक फकीर आया, फकीर तो उस समय माना बड़े ज्ञानी होते थे, तो आया का फकीर ने कहा कि मैं आपको ये तावीज देता हूँ, आप इसको गले में लगा के रखना और इसका बहुत बड़ा मूल्य है, पर इसके अंदर जो चीज पड़ी है वो आप तभी निकालना जब कोई ऐसा समय आ जाए जब आप उसको झेल न सको, ये तभी खोलना, नहीं तो नहीं खोलना, ये एक बड़ा रत्न है इसके अंदर। तो बड़ा महंगा दिया उसने, चलो उसने पहन लिया तावीज, वो पहन ली तो अचानक उसके राज्य पर हमला हुआ, किसी और राजा ने हमला किया राज्य पर, और इस राजा को उसके सिपाही बहुत दूर ले गए, जंग कहां पर गुफाओं में ले गए और इसको छिपाया। अब ये छिप के गुफा में था और वो दुश्मन के सिपाही आए 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 और उसको ढूंढने लगे, पर ये गुफा में छिपा हुआ था तो इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं सके। लेकिन जब ऐसा टेंशन में था उसी समय उसने वो याद आया उस फकीर का कि तावीज, और उसने तावीज खोली और उसमें तावीज में एक कागज था और कागज पर क्या लिखा था, ये भी बीत जाएगा, बस इतना ही, एक ही अक्षर था, एक ही वाक्य था, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, बस उसने वो रट लिया, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, और एकदम उसका मन शांत होता गया और वो दुश्मन के सिपाही आए उसको ढूंढ नहीं सके और चले गए, तब तक उसके सिपाहियों ने वापस अपना राज्य ले लिया। तो राज्य ले लिया, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है राज्य ले लिया और इसको फिर से शाद माने से बड़े बैंड बाजे से उसको वापस अपने राज्य में बुलाया, और जैसे ही राज्य में वापस आया सब ने खुशियां मनाई, इसको भी इतनी खुशी हुई जो खुशी में ही नाचता रहा। फिर उसको अचानक वो तावीज याद आई, वो तावीज खोल के फिर से देखा, ये बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, यानी ये जो इतनी खुशी मना रहे हो ना, कई लोग तो खुशी में ही हार्ट फेल हो जाते हैं इतनी खुशी होती है उस खुशी में ही मर जाते हैं, किसी को लॉटरी मिली तो वो लॉटरी में ही मर जाते हैं क्योंकि इतनी लॉटरी सुन करके वो खुशी भी सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो तावीज उसको फिर याद आई और फिर याद करके वो सब खुशी मना रहे, लेकिन ये बड़ा शांत चित था। तो देखो एक ही पॉइंट, बस ये भी बीत जाएगा, देखो इसके अंदर कितना सार समाया हुआ है गंभीर रहने का, कितनी अपनी स्थिति इसमें हम स्थिर बना सकते, एक रस बना सकते केवल एक ही वाक्य से, ये भी बीत जाएगा। तो चाहे खुशी हो चाहे गम, चाहे दुख हो चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, सब बीत जाएगा। तो ऐसे बाबा ने कितनी ज्ञान की पॉइंट्स हम बच्चों को दी है, जो समय पर याद आए वो रत्न बन जाती है और उसके आधार से हमारी कमाई जमा होती है, जिसको बाबा कहते हैं वो मेरी याद में तुम बिंदी लगाते जाओ, एक शिव बाबा के बाद बिंदी जितनी लगाते जाएंगे उतनी आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। कई बार ऐसा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, हमेशा ये सोचो बिंदी लगाई माना हमारी कमाई बढ़ी, क्योंकि एक के बाद बिंदी लगाई, मेरे सब संबंध एक बाबा से हैं, चाहे कैसा भी दुखद प्रसंग आए, एकदम जो बहुत नजदीक का है वो संसार से चला जाए, लेकिन उस समय भी हमारी स्थिति कितनी अचल अडोल रहे वो बहुत बड़ी परीक्षा है, और उस समय हम ये सोचे कि मेरे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ है, ये तो जीवन साथी था या जो भी संबंधी था, ये केवल एक जन्म का साथी था, बस एक वाक्य ही हम याद करें वो हमको स्थिर बना देगा, और वो स्थिर बनाया माना एक जीरो और ऐड किया, अपनी कमाई ऐड की, नहीं तो कितने व्यर्थ सोच चलते हैं, सबसे बड़ा व्यर्थ सोच तो यही चलता, अब मेरा क्या होगा। हम तो कई बार कहते हैं अगर कोई बहुत नजदीक का कोई शरीर छोड़ता है तो वो गया उसका दुख नहीं होगा, वो तो गया, लेकिन अब मेरा क्या होगा, हाँ मेरा क्या होगा, ये अपना ही स्वार्थ सताता है, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मेरा सच्चा साथी तो भगवान है, भगवान मेरा साथी है। ये तो सब इस मुसाफरी में सब हमारे साथ मुसाफिर है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई भी यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो ये जब हमारी बुद्धि में ये बातें आएगी, ये बिंदु लगाना है, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ये ड्रामा का बिंदु भी जीरो ऐड होता जाता है, कमाई बढ़ती जाती है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, ड्रामा। बस ड्रामा कहा, बिंदी लग गई, बस बिंदी लग गई बुद्धि को, क्योंकि ड्रामा में ऐसा ही होना था। एक सेकंड में बिंदी लग गई, हमारी कमाई हो गई, नहीं तो कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो ज्ञान के जितने भी रत्न हम जमा करते जाएंगे, उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर योग देखो, कल भी बाबा ने कहा एक्यूरेट याद। वो एक्यूरेट याद क्या है? उस गंभीरता से याद, बाबा जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करना, उसी प्रकार से उन्हीं संबंधों से याद करना। उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, बहुत सुंदर अनुभव हम कर सकेंगे। भले भक्ति मार्ग में परमात्मा सर्वव्यापी है ये मान्यता है, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं है। हम तो वो अनुभव कर सकते हैं कि कैसे बाबा हमारे साथ है, हमारे सिर पर उनका हाथ है, एक छत्र छाया जैसे बाबा बनकर, हमारी छत्र छाया बन के हमें आगे ले जा रहे हैं। ऊपर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, साथ भी है। आगे कैसे हैं? हमारा गाइड बन के हमें आगे ले जा रहे हैं। बाबा कहते बस कदम पर कदम रखना है, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा के 100 कदम, ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स बाबा हमें देते हैं। साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में बहुत कुछ आता है। तो एक पॉइंट भी रखी बुद्धि में कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मुझे उनके कदम पर कदम रखना है। अगर ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो क्या करते? अगर ये भी संकल्प किया ना, मुझे वही करना है जो ब्रह्मा बाबा करते, ये भी अगर बुद्धि में आया, मानो आपकी कमाई जमा हुई, तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम आपने रखा, वो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो गई। तो मेरे आगे भी बाबा है, मैं उनको बस कदमों पर कदम रख के आगे चल रहा हूँ। मेरे पीछे भी बाबा है। कैसे बाबा पीछे है? मेरा गार्ड बन करके मेरी रक्षा कर रहा है। हम देखते हैं ना, कई ऐसे वीआईपीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े लोग, वीआईपीज, उनकी आगे पूरी सेना होती है, मानो उनके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। और वो बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं, पूरा घेराव करते हैं उनको, ताकि कोई अंदर ऐसे आ न सके। उनके घेराव के अंदर वो बीच में होता है और उसकी पूरी रक्षा होती है आगे पीछे। अब वो तो फिर भी बाबा कहते हैं चलो इस दुनिया के वीआईपीज है, और हम कौन है? हमारा रक्षक कौन है? स्वयं भगवान। बाबा कहते तुम वी 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 वीआईपी, कितना वी जोड़ दो उतने आप वीआईपीज हो। क्यों? आपसे ऊंचा कोई है ही नहीं दुनिया में। इतना नशा बाबा हमें चढ़ाते, लेकिन हमें वो मनुष्य, ये जो सिपाही होते हैं या बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब किसी के मरने की घड़ी आती है, बॉडीगार्ड्स भी क्या करेंगे? कुछ कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब मौत सामने आता है, ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन भगवान हमारा साथी है, और जिसका भगवान साथी हो, उसकी रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर हो, तो क्या सुंदर कहावत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इतने नशे से हम चढ़ते चलते हैं, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। कई तो इसी डर में रहते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे कौन है रक्षक हमारा? तो इसीलिए जब बुद्धि में वो बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, तो वो ही मेरे आगे है, वो ही मेरे पीछे है, वो ही मेरे साथ है, मेरा सच्चा साथी है, वो ही मेरे सिर के ऊपर मेरा रक्षक है, मेरी छत्र छाया है। तो हम कैसे अपने संकल्पों को निडर बनाएंगे, कैसे अचल बनाएंगे, कैसे अडोल बनाएंगे, कैसे बिंदु लगा सकेंगे, इतना सहज हो जाएगा। तो ज्ञान और योग कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए बाबा कहते कोई भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। हमारी कमाई जमा हो रही है, कमाई जमा हो रही है, हर घड़ी हर श्वास में कमाई जमा हो रही है। कोई बात सामने आई, दो तरीके हैं उनसे न्यारा बनने का। एक तरीका है अपने अंदर चले जाओ, बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, बिंदु आत्मा, बस बिंदु बन जाओ। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को कैसे सिकोड़ लेता है, सिकोड़ लिया उसकी रक्षा हो गई। कछुए का जो ऊपर का कवच होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कोई उस पर पांव भी रख दे ना ऐसे नहीं वो मरेगा, बहुत मजबूत होता है। पुराने जो बहुत ऐसे कछुए होते हैं उनके वो ट्रक भी चला जाए ना तो भी वो मरते नहीं है, वो कवच उनकी रक्षा करता है। तो बाबा कहते हैं ये अंतर्मुखता का कवच पहन लो, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, और सब इंद्रियों को सिकोड़ करके आत्मा बन जाओ। और फिर अगर कोई ऐसी बात आ जाए जो बाबा कहते हैं विघ्न बन सकती है तो ऊपर चले जाओ। बाबा मिसाल देते हैं हवाई जहाज का, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे तो भी इन पर्वतों को भी क्रॉस कर लेता है, कितना ऊंचा चला जाता है। जो इतने पर्वत भी बड़े बड़े पहाड़ वो भी उसके लिए हवाई जहाज के लिए रुकावट नहीं है। तो जैसे वो मिसाल है वो किसके लिए, वो हमारे लिए है। वो स्थूल चीजें ऐसे कर सकती, वो जानवर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी सारी अपनी मनसा की बात है। एक सेकंड में छोड़ो तो छूटो, उड़ जाओ, तो वो इतनी बड़ी चीज होगी वो छोटी दिखेगी। कैसे छोटी दिखेगी, हम उसको कैसे छोटा बना सकते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, आपको एक लकीर दी जाती है और कहा जाता है कि अब इस लकीर को छोटा करो, छोटा करो लकीर, अभी बिना इसको काटे इस लकीर को छोटा करो। तो कैसे करेंगे उसको छोटा बिना काटे, हैं? उसके ऊपर बड़ी लकीर लगा दो, तो उसके ऊपर बड़ी लकीर लिख दी तो क्या हो जाएगा, वो लकीर छोटी हो जाएगी। कितना सहज है, बिना उस लकीर को काटे हम बड़ी लकीर लगा देंगे। लकीर को काटने की जरूरत नहीं है, पर हम उसके ऊपर बड़ी लकीर लगा सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो हम अगर उनसे ऊंचे चले गए तो वो विघ्न, वो बात, वो समस्या, वो जो भी बात है वो छोटी हो जाएगी। पर अब कैसे जाएंगे ऊपर, जो बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए कहा छोड़ो तो छूटो। इंग्लिश में कहते हैं लेट गो लेट गॉड। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि कोई किसी बच्चे को कोई ऐसी भारी चीज होती है, अब बेचारा उठा नहीं सकता है, खुद को भी नहीं उठा सकता, चीज को क्या उठाएगा, तो कहेगा मम्मी ये तुम लो, पापा लो, क्योंकि नहीं उठा सकता है, तो बाबा को दे दो। बाबा कई बार कहते हैं यूज मी, वो किचरे के डब्बे होते हैं ना रोड पर, पता है यूज मी यूज मी, हाँ बाबा को दे दो। वो किचरा नहीं, कई बार किचरा हाथ में होता है, क्या करें, कहाँ रखूं, कहाँ फेंकूं, तो वो दिखते किचरे का डब्बा पड़ा, डालो यूज मी। तो भगवान को क्या बनाओ, किचरे का डब्बा। किचरे का डब्बा माना जो भी अंदर में कमियां कमजोरियां ये सब बाबा को दे दो, अपने पास संभाल के मत रखो, बाबा अब आप संभालो। अब ये इतना सहज है और बाबा बैठा है, हजार भुजाओं वाला बैठा है। कई बार ये ड्रामा दिखाते हैं, बहुत सारे डांस दिखाते हैं, वो डांस में अनेक डांसर्स होती है, तो वो सामने एक ही डांसर दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे लाइन में कई डांसर्स होती है और उनके केवल हाथ दिखाई देते हैं, हाथ कैसे वो हाथ बनाते, हजारों हाथ। तो हजारों हाथों वाला ब्रह्मा कहते हैं, तो हजार हाथ बाबा कहते हैं, वो कौन से, वो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे भगवान के साथी हैं, पर उन साथियों ने पहले सब कुछ उसको सौंपा है, तब फिर बाबा कहते हैं मैं उठा लेता हूं और तुम सब मेरे साथी बन जाते हो। अकेला भी बाबा क्या करेगा, लेकिन पहले सौंप के तो देखो, केवल कहा नहीं, कहना नहीं है, सौंप के देखो माना कहा जरूर, अब सौंप दिया है तो जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में, केवल कहने मात्र नहीं। पर हजारों हाथों वाला भगवान वो मेरा साथी है और हम उनके साथी हैं, तो साथी बन करके भगवान का हमें कार्य करना है। बाकी ये छोटी मोटी बातें ये तो संसार की बातें हैं, आज है कल नहीं होगी, तो इनसे न्यारा हो जाओ, वो बाबा को दे दो। और भगवान के कार्य में अगर अपना हाथ बटाएंगे तो बाबा 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना, 1,00,000,000 गुना उसकी उसका रिटर्न देता है, क्योंकि समय पर काम आए, समय पर भगवान के कार्य में हाथ दिया, वो भगवान का ही हाथ बन जाएगा समय पर जो हाथ दिया, तो उसका कितना बड़ा एवजा मिलता है। अब ये अगर हम बुद्धि में धारण करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सारी बातों में हमारी कमाई 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 होगी और एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए बाबा हमको कहते चार्ट रखो, चार्ट लिखो। चार्ट की बाबा क्यों इतनी महिमा गाते हैं, क्योंकि चार्ट से पता चलता है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हम क्या वचन बोल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या हमारे संबंध संपर्क में बातें आती है, कहाँ बुद्धि जाती है, कहाँ श्वास जा रहा है, कहाँ हमारा धन लग रहा है। तो जब चार्ट अनुसार हम उस पर ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ सफल होता है। लेकिन बाबा कहते हैं साथ साथ ये भी ध्यान रखो, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी, क्योंकि पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी, समय बहुत कम है। इसलिए बाबा ने 3 शब्द दिए, एक बाबा ने कहा अचानक अचानक, दूसरा बाबा ने कहा एवर रेडी, और तीसरा बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास। ये तीनों बातों पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ भी होना है अचानक होना है, ये पहले कह करके नहीं आएगा, इसलिए हर बात के लिए हमें तैयार रहना है। कुछ भी हो जाए सोचना भी नहीं है, प्लान नहीं बनाने हैं। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा प्लान भले बनाओ लेकिन प्लेन बुद्धियों के बनाओ, भविष्य में क्या करना है कैसे करना है उसके प्लान तो बनाने पड़ेंगे, ये मकान बनाना है, ये सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, बनाओ। फिर संगठन में वो राय निकालो, फिर जो सबकी राय बने उसको स्वीकार करो, मालिक बन करके राय दो, फिर जो स्वीकार हो वो बालक बन करके स्वीकार करो, ये नहीं कि मेरी राय क्यों नहीं ली, हाँ मैंने जो कहा वो क्यों नहीं माना, नहीं, फिर बालक बन जाओ, प्लेन बुद्धि बन जाओ, तो इसमें भी आपका समय श्वास संकल्प शक्ति बच जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हर कदम कदम पर ये देखते रहना है, मेरा कुछ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, मेरा कुछ अनर्थ तो नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ सफल हो रहा है। इसलिए देखो गाड़ी के अंदर भी ब्रेक का बड़ा महत्व है, ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, अगर ब्रेक पावरफुल नहीं होगी तो कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए ब्रेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अपने संकल्पों को ब्रेक देने की, वाणी को ब्रेक देने की। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, इससे किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, पर हम क्या सोचते, मुझे बोलने दो ना, हाँ उबाला आया निकाल दो। नहीं, अपने वाणी पर भी पूर्ण कंट्रोल हो। किसी को बाबा कहते दुख मत दो, ऐसे कोई शब्द मत कहो जो किसी को दुख हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि ये रिटर्न मिलना है। और घाटा होना है तो वो भी 100 गुना लाख गुना करोड़ गुना होगा, फायदा होना है तो भी 100 लाख करोड़ गुना होना है। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हर कदम सोच समझ कर उठाना है, चाहे सोचने का कर्म, चाहे बोलने का कर्म, चाहे व्यवहार का कर्म, चाहे संबंध संपर्क में आने का कर्म। बाबा कहते हमेशा हमारे सामने चॉइस है, क्या करो और क्या न करो। ऐसा कोई भी कर्म मत करो जो बिना सोचे समझे हुआ हो, और बिना सोचे समझे अगर हुआ वो व्यर्थ के खाते में गया तो नुकसान छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जबकि हम संगम युग पर कमाई के युग में बैठे हैं, जो सारे कल्प की कमाई कर रहे हैं, तो कितना अपने ऊपर ध्यान देना है, बस यही बुद्धि में रखना है। इसलिए बाबा कहते दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखो। आज भी बाबा ने कहा, उसने गाली दी, उसने गुस्सा किया, उसने ये किया, तुम चुप रहो, बस चुप रहेंगे तो ताली बजेगी नहीं, तुम भी कहेंगे तो दो हाथ से ताली बजती है। उसने मुझे ऐसे कहा तो मैं कैसे नहीं जवाब देता, मैं भी कोई कम हूं क्या? नहीं, उसने कहा उसका कर्म बना, जो करेगा वो पाएगा। कई बार तो ऐसे अनुभव होता है कि जो ऐसे गुस्से में होता है या कुछ भी उसका गलत कर्म है, वो बेचारा बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, बहुत कमजोर है, तो मैं उसको शांति का दान दूं, शक्ति का दान दूं, मैं ऊपर चला जाऊं, ऊंचा चला जाऊं। ताली नहीं बजानी है जोर से, दो हाथ नहीं चलाने हैं। उसने किया, चलो उसका कर्म, पर मैं अपने कर्मों को देखूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। तो उस समय पहले मैं, और जहां सेवा की बात आती है, मिल करके करने की बात आती है, पहले आप। कल भी बाबा का वरदान था, पहले आप। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा ने सबको आगे रखा, पर ये थोड़ी कि ब्रह्मा बाबा पीछे हो गए। दादी जी ने सबको आगे किया। मुझे याद है एक बार बड़ी दादी के साथ हम बैठे थे, तो कोई पत्रकार के साथ वार्ता चल रही थी, तो पत्रकार ने दादी से पूछा कि दादी जी आप इतना बड़ा कारोबार कैसे चला रहे हो, इतने आपके सेंटर्स, इतने हजारों बहने, क्या नहीं होगा, कितनी बातें आपके सामने भी आती होगी, आप ये कैसे करते हो? तो दादी ने बस एक ही शब्द कहा, एक शब्द क्या था, मेरा सब पर विश्वास है। एक शब्द का, मेरा सब पर विश्वास है, जो भी बहने हैं विश्वास है मेरा उन पर, और उस विश्वास के आधार पर ये यज्ञ चल रहा है। भले अकाउंट्स है, ये है, सब कुछ देना है, पर विश्वास, अगर विश्वास न होता ना, ये यज्ञ कभी नहीं आगे बढ़ता। पर दादी जी ने एक शब्द में मानो सब प्रश्नों का जवाब दे दिया, विश्वास। उस विश्वास शब्द में इतनी शक्ति है, जिसके आधार से ये भगवान का कार्य चल रहा है। और जहां सत्यता है, उस सत्यता की तो जीत होनी ही है, सत्यता की कभी हार हो ही नहीं सकती है। बस अंदर में ये देखना है कि मेरे अंदर सत्यता कितनी है, और जो करेगा वो तो पाएगा ही। इसीलिए मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है, अपना हर कदम सफल करना है, सफल करना है, सफल करना है, सफल करके सफलता को पाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। अभी एक सेकंड में सबको जो भी मन में बातें ना, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ वहाँ की, इधर उधर की, इसकी उसकी, एक सेकंड में फुल स्टॉप। बिंदु लगा दो, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ, बिंदु को याद करो और सफल करो, सफलता को पाओ।